अस्सलामुअलैकुम नाजिन, रावलपिंडी के वाक्य ने हम पर एक दफा फिर ये वाजे किया कि हम किस टाइम बॉम्ब, टिकिंग टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं। इसको आप टाइम बॉम्ब कहें, इसको आप वॉल्केनो कहें, कि एक छोटी सी चिंगारी कैसी आग लगा सकती है। रावलपिंडी के वाक्य से ये वाजे हो गया। जो कुछ भी हुआ, जैसे की जरूरत है कि आगे मुस्तकबिल में इस तरह के वाक्यात दोबारा ना हो, क्योंकि अगर इस तरह के वाक्य हुए, जिससे हमने कल दो तीन दिन पहले के इस वाक्य में देखा कि मुख्तलिफ शहर इसकी लपेट में आ गए, ये मामला अगर फैल जाता और मजीद फैल जाता तो शायद हालात और खराब हो सकते थे। लेकिन गुफ्तगू आज की कि इसको रोके कैसे, मुस्तकबिल में ऐसी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या कुछ किया जा सकता है कि जो हेट मटीरियल इस वक्त मौजूद है, जिसमें एक सेक्ट दूसरे के बारे में जिस किस्म की बात करता है, उसके ऊपर कैसे पाबंदी लगाई जाए, उसको कैसे रोका जाए, वो जो जज्बात है लोगों के उसको, और आगे मुस्तकबिल में जैसे माजी में हमने देखा कि ये लोग इकट्ठे रहते थे, अब क्या करें और मुस्तकबिल में क्या किया जा सकता है। अरुण रशीद साहब ऐसे मौजूद हैं, सीनियर तर्जन का बहुत शुक्रिया अरुण साहब आपका। अलाम नासिर जब अब्बास जाफरी साहब सेक्टरी जनरल मजलिस से बैठे थे मुस्लिमीन के, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुफ्ती नईम साहब हमारे साथ जामिया बनौरिया कराची से मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका भी। और मकबूल जान साहब सीनियर तजिया निगार आपको हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, औरिया साहब आपका भी शुक्रिया। अरुण साहब आपके साथ, आपसे शुरू करता हूं। बहुत सी चीजें जो हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं, इसके से गुस्सा फैल रहा है, एक हेट मटीरियल जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं, ऐसा जो नफरत फैलाता जिसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी है जिसको देखकर शायद जो पढ़ेगा और अगर वो कन्विंस हो जाए आपसे खराब कर सकते, किस तरह इसको आप क्या कहेंगे, कैसे रोके इस तरह?
ये कल मैं किसी की टीवी चैनल की गाड़ी में कहीं जा रहा था तो उसने मुझे कहा ड्राइवर ने कि ये आप क्या कह रहे हैं कि वहां 10 आदमी मरे हैं, वहां तो दर्जनों आदमी मरे,
30 कोई कहता 30 मरे हैं, कोई कहता 30।
देखे ना ये वाक्य कैसे, अफसाना कैसे बनता है, तारीख अफसाना कैसे बनती है, वाक्य अफसाना कैसे बनता है। उसने कहा वहां तो दर्जनों आदमी मरे, वैसे तो एक आदमी भी अगर मर जाए इस तरह की सिचुएशन में तो नहायत ही तकलीफ दे और फौरन सोचना चाहिए कि ये कैसे हो गया, इसको रोकना कैसे।
ठीक,
तारीख में अफसाना बहुत है, ठीक है, उससे पाकिस्तान स्टेट की रिट नहीं है, कानून नाफज नहीं किया जाता, इंसाफ होता नहीं, इसमें हम बात करते रहते हैं। उससे फिर जो अवारिस फैलते हैं, फिर जत्थाबंदी होती है, फिर बुग्ज अदावत होती है, फिर खुरेजी होती है, फिर अदावत मुस्तकिल भी हो जाती है, उससे दुश्मन फायदा भी उठाते हैं। गुजारे ये है, पहली बात तो ये है कि ये दो उलमाए दीन हमारे दरमियान बैठे हैं, इनकी राय पूछे, जो मेरी मामूली तालिब इल्म की समझ में आती है कि अल फितने तो अशद्द मिन अल कत्ल, हेट लिटरेचर जो है कि ये फितने की जैल में आता है या नहीं आता, तकफीर और तबर्रा क्या ये फितने की जैल में आता है या नहीं आता, अगर कुरान कहता है कि ये कत्ल से बड़ा जुर्म है तो जी नीचे
तकफीर तबर्रा हेट मटीरियल,
ये जाहिर है हेट मटीरियल ही है ना, तकफीर तबर्रा ही होता है, झूठ होता है उसमें और उसमें मुबालगा आ रही होती है। मतलब हमने अपने बचपन में कई फिरकों के बारे में बहुत सी बातें सुनी, जब बड़े हुए तहकीक की तो मालूम हुआ कि इसमें तो 99% मुबालगा है सब फिरकों के बारे में, ठीक एक दूसरे फिरकों की बात है। दूसरी बात यह है हुजूर वाला, लॉ एंड ऑर्डर हुकूमत की जिम्मेदारी है और लॉ एंड ऑर्डर इस तरह नाफिज होता है कि जो लोग फसाद कर रहे हो वाकई कर रहे हो, ये यकीन होने चाहिए, इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए। देखिए दुबई में नाइट लाइफ है, जो कि बजाय खुद को दुनिया भर के लोग आते हैं, मेरा ख्याल 1 मिलियन लोग रोजाना वहां शहर में दाखिल होते हैं, फसाद क्यों नहीं होता, इंटेलिजेंस ठीक है, पुलिस ठीक है, सिफारिश नहीं चलती,
लेकिन कंट्रोल
ये जो पुलिस है,
का कंट्रोल भी
ये जो पुलिस है होना चाहिए ना।
देखें कोई
तक कानून का दल,
मैं तुर्की में गया सर, वहां पर मस्जिद जो बड़ी मस्जिद है वहां पर आप रियासत की मर्जी और उसके अप्रूवल के बगैर कोई
हमारी रवायत
खुतबा नहीं
है, हमारी रवायत मुख्तलिफ है, रवायत होनी चाहिए, अलबत्ता आजादी के नारवा इस्तेमाल की इजाजत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये कौन सी पुलिस है, मैं 3 दिन से पूछ रहा हूं, जिसका हर SHO वजीर दाखिला के कहने पर लगाया गया पिंडी में, वो वजीर ये पुलिस जब तक ठीक नहीं होगी और डिटर्मिनेशन अमलन नहीं होगी कानून नाफज करने की, आप एक अच्छा पुलिस इसको मॉडल बनाए आप इस केस को। वहां कोयटा में अलमनाक वाकयात हुए पिछले 5 साल में, 10 साल में किसी को सजा हुई इन सारी चीजों पे? जब मुजरम बेखौफ हो जाता है तो फिर कुछ भी हो सकता है,
बढ़ेगा।
अब जहां तक देखें, मैं राय नहीं हतमी राय नहीं दे रहा, अब तक जो चीजें सामने आई हैं उसमें ये सामने आया है कि जिन लोगों ने फसाद किया वो मरकजी जुलूस का हिस्सा नहीं थे, अगर ये नादुरुस्त है तो इसकी तस्दीक हो जाएगी। और
हिसाब
नहीं कार्रवाई करते, ये कार्रवाई अब तक जो मालूमात है, मैं 100% में सदका नहीं कह रहा, जहां कहीं कोयटा में आदमी मारे गए थे बेगुनाह, आम शहरी मारे गए थे ना, उनके कातलों को पकड़ने के लिए कितनी संजीव कोशिश की गई, ये इंटेलिजेंस एजेंसी हमने किस दिन के लिए बनाई थी, ये पुलिस हमने किस दिन के लिए बनाई थी, ये जो मैं अपनी 1/3 सैलरी सपोर्ट को देता हूँ इसलिए देता हूँ ना कि ये मुझे प्रोटेक्शन दे, और हर शहरी देता है, मैं अकेला तो नहीं देता, सभी देते हैं, कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट।
ठीक, मैं मुफ्ती नईम साहब से पूछता हूँ, फिर मैं मौला साहब आपके पास आता हूँ। मुफ्ती नईम साहब, आपने हारून रशीद साहब की बात सुनी, किस किस चीज पर पाबंदी लगाना चाहेंगे आप? जरा थोड़ा बिजनेस एंड की तरफ चलते, क्या करें?
सबसे पहले तो ये वाकया हुआ है सानिया, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, और उसकी जितनी सजीव मरम्मत की जाए कम है, और बड़ा दिल दुखता है इस वाक्य को सुनकर। लेकिन मसला है कि मैं आपके इस प्रोग्राम में कुछ बातें करना चाहता हूँ, इस बात की कि मुस्बत अंदाज की बातें हों जिससे मसाइल हल हों, मसाइल बड़े नहीं बल्कि मसाइल हल हों। देखिए, बात यह है कि गुज़िश्ता चंद सालों से पाकिस्तान के अंदर तमाम गैर मुल्की ताकतें, दूसरी ताकतें वो लगी नहीं है इस बात पर, इसके लिए हमें चाहिए कि शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी तमाम मकातब के उलमा बैठकर इस बात पर गौर करें कि ये फसादात की जो वजूहात है उनको रोका जाए। जब तक हम फसादात की वजूहात नहीं रोकेंगे, 1,00,000 पुलिस भी आप लगा देंगे, खुदाना खासकर कहीं से एक पताखा भी फूटेगा, तो फिर जो है आपस के अंदर इश्तेहाल लड़ाई हो जाए। बुनियादी चंद बातें हैं आपके तवस्सुल से करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हमारे है, होते हैं पूरी पूरी रात लाउड स्पीकर चलता है, सारे मोहल्ला तंग होते हैं, सारे इलाका तंग होते हैं, और उसकी वजह से फिर जो तकरीर करने वाला वाइज है वो अपने जज्बात दिखाता है, अगर वो देवबंदी हो तो देवबंदी दिखाता है, बरेली है तो बरेली दिखाता है, शिया सुन्नी सब दिखाते हैं, उससे हमारे नौजवान जो है उनके अंदर इंतहा पसंदी पैदा होती है, शिद्दत पसंदी पैदा होती है, फिर उसके बाद वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते
हैं। लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगा दी जाए,
लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और खुतबे के अलावा किसी के लिए कतन इजाजत ना हो, तो उसका तरीका यह कि अंदर का लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने, नंबर एक। नंबर दो, वजह 40 उलमा जाकिरी, जारी का क्या मतलब, जिनके पास सनद नहीं है और वो टोपी पहनकर और एक पगड़ी बांधकर और अपने आप को बगैर डिग्री के, आप बताएं कि किसी मुल्क के अंदर आप कराची में पाकिस्तान में अगर डॉक्टर बैठा होता है तो पहले पूछते हैं कि इनकी डॉक्टर की
डिग्री। बिल्कुल दोस्तों,
हमारे यहाँ यह सूरत हाल ये है जिसको मूसा और फिरौन का अच्छा वाक, तो वो आलिम है थोड़ा तंग लगा कर बयान कर ले, हमारे यहाँ चूंकि तालीम याफ्ता तो नहीं है, खसूस दीन की तालीम तो इतनी है नहीं, लोग कहते हैं भाई इससे बड़ा मुफ्ती आजम कोई नहीं है, जरा अच्छी तरीके से नाद पढ़ने वाला हो या तकरीर करने वाला हो, तो सबसे पहले वाइजीन जो है उनके लिए एक बोर्ड बनाया जाए, और वो किसी मस्जिद या इमाम में या कहीं वाज कर रहा है तो पहले उसकी सनद देखी जाए, और उसके बाद उसको ये हक हो कि ये बात करें। इन लोगों ने ऐसे फसादात बर्पा किए हैं जिसकी वजह से लड़ाइयां दिन ब दिन बढ़ती जाए, सनद जिनके पास नहीं,
जिनका सनद का भाव। ठीक,
तीसरी बात यह है कि फसादात की जब तक जड़ को खत्म नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप समझते हैं कि फसादात खत्म हो गए नहीं होंगे, वो लिटरेचर जो तकसीम हो रहा है और आज भी मौजूद है बाजारों में रोडों पर, हम मुस्तकिल हुकूमत को कह चुके हैं, रियासत को कह चुके हैं, शिया सुन्नी के खिलाफ और देवबंदी बरेलवी के खिलाफ, और ऐसी बातें उसके अंदर मौजूद है कि जब वो लिटरेचर तकसीम होता है तो हमारा जवान जज्बात में आता है, और जज्बात में आने के बाद तगड़ी भी तैयार हो जाए के लिए तैयार हो जाता है।
सो ऐसे लिटरेचर पर पाबंदी लगा दी जाए, ये भी हारून रशीद साहब के साथ हम पहले डिस्कस सर चौथी बताए ताकि मैं इसके ऊपर फिर आगे बढ़े।
लिटरेचरों को जब्त किया जाए, उसके मुसद्दिकीन को सजा दी जाए। नंबर पांचवी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप देखें कि इस वक्त सूरत हाल दिन ब दिन खराब इसलिए हो रही है कि दूसरी ताकतें हमारे दरमियान आ गई। अब इस सूरत के अंदर अगर छोटे छोटे बाजारों में गलियों के अंदर जब जुलूस को लेके गुजरते हैं तो जो जुलूस में जाने वाले हैं वो भी अपने आप को खतरा महसूस करते हैं कि कहीं हमारी जान खतरे में ना हो, वो भी खतरा होता है। तो मैं ये पूछता हूं कि ये जुलूस इनके यहाँ फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुबाह है? अगर ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ये जुलूस का निकालना मुबाह है तो जरूरी नहीं है, तो जान बचाना तो फर्ज है।
ठीक,
लिहाजा अगर जुलूस के रास्तों को पहले जमाने के इनको लाइसेंस मिले हुए हैं और वो छोटे छोटे उस जमाने के अंदर जुलूस होते थे, अब बड़े बड़े जुलूस है, आबादी बढ़ी है, इलाके छोटे हो गए, नतीजा ये निकलता है कहीं से पटाखा भी पड़ता है। जुलूस में देवबंदी सुन्नी और शिया मिलकर भी चले और अगर अचानक कोई पटाखा हो जाए फिर आपस में, इसलिए हम
जुलूसों को किसी एक जगह पे कर दिया जाए सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ तेजी से भक्त करना थोड़ा सा,
कि अगर जुलूस इतना जरूरी नहीं है तो इबादत गांव में रखा जाए,
इबादत गांव में,
अगर जुलूस जरूरी है तो ऐसे खुले रोडों पर निकाल दिया जाए जहाँ पर पुलिस के लिए भी आसानी हो और इलाके और मोहल्ले से। अब आप ये देखे जाए कि शिया और सुन्नी कितने ऐसे हजारों मरीज होंगे इन जुलूसों की वजह से हॉस्पिटल नहीं जा सकते। मेरे एक खास दोस्त के हॉस्पिटल ना पहुंचने की वजह से उनका इंतकाल हो गया और वो मरीज जो है वो शिया भी हो सकते हैं, सुन्नी भी हो सकते हैं, लिहाजा ये कितना बड़ा
गैर मुस्लिम भी हो तब भी मरीज मरीज है सर। इसलिए बात बताएं उसके बाद जवाब इन्होंने ब्रेक ले लो इजाजत है, अलावा सर ब्रेक के बाद आपसे भी और ये सब आप भी सुन रहे हैं। ये मामला बड़ा टची है, ये चले छोटे चार पांच नुकात हमारे सामने तो आ गए कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, जाली उलमा जाकरीन लिटरेट मौजूद है और जो इबादत के लिए या जुलूस और जुलूस अगर जरूरी नहीं है तो उनको किसी एक जगह पे कन्फाइन कर दिया जाए, क्या यही काफी होगा? ये मैं और ये सब आपसे पूछ रहे
हैं, बड़े बाजारों से
बड़े छोटे बाजारों से निकाल दे, बड़े रोडों से लेकिन इसके ऊपर बहस करते हुए मैं आपका नुकसान इस पर भी ले लूं। ये ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लगा वापस वेलकम बैक नाज़रीन। रावलपिंडी इंसिडेंट के तनाजुर में हम ये बात कर रहे हैं। अलामा साहब, मुफ्ती नईम साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, चंद चीजों पे तो सबका इत्तेफाक से इस चीज को एक बात जो जुलूस गुजरते हैं बाजारों से उसके ऊपर आपका क्या नुकता
नाज करता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले वो लोग जो बेगुनाह मारे गए उनका दुख है हमें। उस रात एक नहीं कई मसाजिद जली हैं, कई मंबारगढ़ जली हैं, जत्थे थे जो शर्मसंदी कर रहे थे जिन्होंने सैकड़ों कुरान जलाए, मसाजिद को आग लगाई, मुकद्दसात को आग लगाई। ये अल्लाह के घर को जलाने वाले, इमाम बारगाह को जलाने वाले, मसाजिद जलाने वाले, क्योंकि मस्जिद इमाम बारगाह हमारे यहाँ इकट्ठी होती होती है, 900 से ज्यादा जले, खुद बेहंदर इमाम बारगाहें मसाजिद जली हुई है। ये लोग जो जलाने वाले थे मकसद क्या था कि पूरे मुल्क में आग फैले और इस तरह से वो जो अमन दुश्मन कुवते हैं उनको मौका मिले और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। लिहाजा ये काबिल मजम्मत वाकयात हैं और इनकी मजम्मत करनी चाहिए। मैं मुफ्ती साहब से भी कहूंगा, आपसे भी कहूंगा, आप शहर में जाके देखें, जिसने जुल्म किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको कोई ऑन नहीं कर सकता है, उसे डिसऑन करना चाहिए, कोई भी है तहकीकात होनी चाहिए कि किस तरह से इतनी मसाजिद मारी जलती रही। लिहाजा एक तो इस चीज को देखना चाहिए, सारे कजिए को देखना चाहिए। उसके बाद जो हुआ मुल्तान का वाकया, चश्तियां का वाकई, शर्त समझी कौन करता रहा है? अहले तशियों की पाकिस्तान में तारीख है कि हमने 100 जनाजा उठाया, हमने कहीं पत्थर नहीं उठाया, किसी को नहीं मारा, कहीं आग नहीं लगाई। पूरे पाकिस्तान के वाकयात देखें, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची, कराची कोटा तक 5 साल तक पड़ा चिनार मुहासरे में मामला होता रहा, किसी को आग नहीं लगाई। अब जहां तक ताल्लुक है कि इन चीजों को बेहतर कैसे किया जाए, दहशत गर्दों को, शर्पसंदों को हमें उनको उनकी असल शिकनी करनी चाहिए। वो इस तरह से आपके बुनियादी हकूक के साथ खेले कि जिससे स्टेट के अंदर लोगों को घरों के अंदर बंद करके रख दिया जाए, स्कूल आप नहीं जाएंगे, आपके स्कूल भी ठीक नहीं है, आपके बाजार भी ठीक नहीं है, आपकी मार्केटें भी ठीक नहीं है। क्या मस्जिदों पर हमले नहीं हुए? मस्जिदों के अंदर खुदकुश हमले नहीं हुए? चर्च के अंदर खुदकुश हमले नहीं हुए? उन्हें भी बंद कर देना चाहिए। क्या ये हल है? हाँ, نفرت والا جو دل لٹریچر ہے، یہ تو بندے پکڑے جا سکتے ہیں، مصنف کا نام لکھا ہوتا ہے، کون ہے آپ؟ کم از کم گزشتہ 20 سال، حد اقل 20 سال، نہیں 10 سال کے اندر کا لٹریچر سامنے رکھ لے، جتنے بھی مجرم لکھنے والے، چلانے والے، وطن کاش کرنے والے ہیں، انہیں سزا ملنی چاہیے۔
لیکن خود کیوں نہیں روکتے؟
دیکھیے میں اگر بات کروں گا نا، میں بائسڈ ہو جاؤں گا کہ ممکن ہے یہ ایک کا دفاع کر رہا ہے، کہ میں کہہ رہا ہوں جس نے لکھا ہے جہاں سے چھپا ہے، ان جو چھاپنے والے مراکز ہیں انہیں بند کیا جائے، مصنفین اور مؤلفین کو گرفتار کیا جائے، انہیں سزا دی جائے، ایک بات۔ لہذا یہ حل نہیں ہے کہ آپ مساجد بند کر دیں، آپ بھی خودکش حملے ہو رہے ہیں، چرچ بند کر دیں،
کہا تھا مفتی صاحب نے کہا،
باقی کسی بھی چیز کا ناجائز
استعمال ہے، سنت ہے،
میں عرض کرتا ہوں کسی بھی چیز کا استعمال نہیں، کوئی بھی اس کا ناجائز استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے علماء، بزرگان اور یہ جو سمجھدار لوگ ہیں، مفتی نعیم صاحب جیسے لوگ ہیں، زید الراشدی صاحب جیسے لوگ ہیں، مفتی منیب صاحب جیسے لوگ ہیں، اور حامد رضا صاحب اس طرح جو بزرگ علماء اہل سنت کے، تشیع کے، اہل حدیث کے ساجد میر صاحب ہیں، یہ سامع علی ظہیر صاحب ہیں، یہ لوگ مل کر اس ملک کی فضا کو بہتر بنا سکتے ہیں، رائے حل بھی نکال سکتے ہیں، تاکہ ہم سلسلے کو لے کے آگے بڑھیں، نہ یہ کہ شر پسندوں کو موقع دیں کہ وہ کہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں، آزاداری کے جلوس فقط شیعہ نہیں نکالتے، یہ ہر حسینی سے میں آتا ہے جو نواسا رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ لہذا ایک مقدس غم ہے، اس کے حوالے سے ہمیں نہیں چاہیے کہ کچھ لوگ شر پسند عناصر اس پر حملے کرتے ہیں، ہم نے جلوسوں پر بم بلاسٹ کیے گئے، حملے کیے گئے، ہم نے
آج تک کسی کو کسی دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے؟
میں یہ کہتا ہوں دیکھیں، جلوس جو آزاداری میں آتا ہے وہ اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے بچوں سے سمجھ جاتا ہے، وہ شر پسندی کے لیے نہیں آتا ہے،
لیکن اپنے گھر والوں سمجھ جاتا ہے،
آپ کا اس میں آسان ہے۔ دیکھیے ہر جی کے اگر بڑے بازاروں میں ہے تو روڈ میں تھوڑی بہت تبدیلی کر،
میں کہتا ہوں دیکھیے، یہ تو میں گھروں علماء بیٹھی مل بیٹھ کر حل کا ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے شر پسندوں کی کوئی حوصلہ افزائی ہو، وہ کہ آج ہم نے یہ کیا ہے، کل اب ہم کہیں گے کہ امام بارگاہ میں جیسی ہونی چاہیے، پھر کہیں گے جناب والا گھروں میں بھی نہیں ہونی چاہیے، اور بنیادی طور پر ان کو موقع دیا جائے کہ وہ شرارتیں کرتے رہے، نہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، ان کے خلاف سٹینڈ لینے چاہیے، ان کو کنڈیم کرنا چاہیے، یہ ایک واقعہ نہیں دہشت گردی کا پاکستان کا
مسئلہ یہ ہے۔ مجھے بہت سے لوگ ٹیلی فون فار ایگزامپل بند کرنے پر یہ کہتے ہیں تو کیا پھر ہم یہ بھی اسی
طریقے
تو انسانی جان بچانے کا میں سکون رکھتے،
انسانی جان تو گھر میں محفوظ نہیں ہے، گھر بند کر دیں گے، انسانی جان تو آپ کے ایئر بیس کے اندر محفوظ نہیں ہوگی، انسانی جان تو پولیس بند کر دیں گے آپ۔ مسئلہ جو اپنے ہارون رشید صاحب نے کہا ہے کہ سٹیٹ کو اپنی ہٹ بنوانی چاہیے، قانون کی حکومت ہونی چاہیے، ایک مضبوط حکومتی پاکستان کی مشکلات اور مسائل کا حل ہے۔
اوریا صاحب سے اس کا جائے، اوریا صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس گفتگو میں، کیا کرنا چاہیے پھر؟ دیکھیں دنیا کی کتنی بھی مضبوط ترین حکومت ہونا، تو وہ اگر جاکر علماء نہیں چاہیں گے تو یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہیٹ لٹریچر کی بات ہے، اس کے لیے آپ کو بازار میں جانا پڑتا ہے، جا کے خریدنا پڑتا ہے، لینا پڑتا ہے۔ مساجد کے باہر میں ایک بڑا عجیب و غریب فینومنا آیا ہے، تو کیسے مشہور ہوا ہے، اسی طرح ہمارے علماء کرام جو ہیں یہ پورے پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی مشہور ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک زمانے میں کہا کرتے تھے فلاں دیوبندی بریلوی کے خلاف کہتا ہے، بریلوی جو ہے دیوبندی کے خلاف کہتا ہے، شیعہ سنی کے خلاف کہتا ہے، سنی شیعہ کے خلاف کہتا ہے۔ وہ پہلے ویڈیو کیسٹ آئیں، آڈیو کیسٹ آئیں، پھر ویڈیو کیسٹ آئیں، پھر سی ڈی ڈی وی ڈی آئیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ اپنا موبائل کھولیں، اس کے اوپر جائیں، کسی بھی ویب سائٹ پہ، کسی بھی یوٹیوب پہ جائیں، ان کے علماء کی کتاب تقریر وہ آپ کو کھول کے دکھا دے گا کہ بھائی